नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी।
सेंसस दो फेजेज में होगा। फेज वन में फोकस रहेगा हाउसहोल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज टू, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा भारत के कानूनों के हिसाब से।
श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने कोयला लिंकेज नीति कोल सेतु में सुधारों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी अनुमोदन किया है।
आज कोपरा के लिए एमएसपी का अप्रूवल हुआ है। मिलिंग कोपरा का 12,027 पर क्विंटल रखा गया है एंड फॉर बॉल कोपरा द प्राइस विच इज अप्रूव्ड इज 12,500 रुपीज पर क्विंटल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय न केवल नारियल किसानों की आय बढ़ाएगा बल्कि कोपरा उत्पादन को भी प्रोत्साहन देगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देशभर के किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार देश में ही विमान विनिर्माण शुरू करने जा रही है। श्री नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूसी विमान कंपनी सुखोई के साथ संबंधित प्रौद्योगिकी हासिल करने का प्रयास कर रही है। आज लोकसभा में विमान किराया विनियमन संबंधी प्रस्ताव के जवाब में नागर विमानन मंत्री ने कहा कि विमानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास असाधारण परिस्थितियों में विमान किराए पर सीमा लागू करने का अधिकार है ताकि यात्रियों को अप्रत्याशित किराए का सामना न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र में आज केन्या के नैरोबी में भारत द्वारा प्रस्तावित जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना विषय को अपनाया गया। भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ जिससे विश्व स्तर पर जंगल में आग लगने के बढ़ते खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता की वैश्विक मान्यता की पुष्टि हुई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जंगल की आग के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को मजबूत करना है। सिक्किम विधानसभा ने राज्य के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने का प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन ने राज्य सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति की हाल में सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों का अनुमोदन किया। इस फैसले से इन 12 समुदायों के लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति के निर्धारित लाभ और अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस विशेषज्ञ समिति में शिक्षाविद, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वाहन अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समिति वाहन प्रदूषण पर अंकुश के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त उपायों की सिफारिश करेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस महीने की 15 तारीख को समिति की पहली बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों में 6 महिलाएं हैं। इन माओवादियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि माओवादियों द्वारा सौंपे गए हथियारों में एक AK-47 राइफल, 2 SLR राइफल, 1 स्टेन गन और 1 BGL लॉन्चर शामिल है। चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की ओर से जोशना चिनप्पा ने दक्षिण अफ्रीका की टीगन रसल को, अभय सिंह ने डेवाल्ड वैन निकेर को और अनहा सिंह ने हेले वार्ड को शिकस्त दी। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने ब्राजील को 4-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।